भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा श्लोक क्रमांक 12। रहु गुणैत तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महत्पादरजोभिषेकम्। रहु गुणैत तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महत्पादरजोभिषेकम्। रहु गुणैत तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महत्पादरजोभिषेकम्। माता जी रहुगुण महाराज रहुगुण एतत् यह ज्ञान तपसा कठोर तपस्याओं द्वारा नयाति नहीं प्राप्त किया जा सकता न नहीं, च और इज्जया भगवान की आराधना द्वारा, गृहात एक उत्तम गृहस्थ जीवन पालन करने से, वा और ना ना, छंदसा ब्रह्मचर्य एवं वेदों का पालन करने से, न एव नहीं, जल अग्नि सूर्यैर कठोर तपस्या जैसे अपने आप को सूर्य के नीचे उपस्थित रहने से और भीषम अग्नि में खड़े रहने से, विना बिना महत महान भक्त पाद रज, उनके चरणों की धूल, अभिषेकम अपने शरीर पर अभिषेक करना। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रिय महाराज रहुगुण, जब तक व्यक्ति किसी महान भक्त के चरणों के धूल से अपने शरीर को अभिषेक नहीं करता, वह परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम सत्य को ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अपने गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक पालन करने से, जैसे कि वानप्रस्थ लेना, संन्यास ग्रहण करना और कठोर तपस्याओं द्वारा, जैसे कि पानी के भीतर तपस्या करना, कठोर अग्नि एवं भीष्म सूर्य के ताप से अपने आप को तपस्या करना, उसमें खड़े रहकर तपस्या करना, इन कार्यों द्वारा आप परम सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि परम सत्य केवल एकमात्र मार्ग से पाया जा सकता है, वो है भक्तों की कृपा से। तात्पर्य, परम सत्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कि एक भक्त का आश्रय लेता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने आध्यात्मिक जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए उसे वेदों का केवल पालन करने से प्राप्त नहीं होगा, उसे एक भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसकी कृपा से ही वह परम सत्य को जान सकता है और कृष्ण के प्रति अपने संबंध को पहचान सकता है। एक भौतिक व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि वह अपने भौतिक कार्यों और अपने वानप्रस्थ अपने गृहस्थ जीवन के सभी सकाम कर्मों द्वारा परम सत्य को जान सकता है, लेकिन वह इस श्लोक में पूर्ण रूप से नकारा गया है। कोई भी परम सत्य को केवल नियम पालन करने से प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे कि ब्रह्मचर्य इत्यादि। एक व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्त का सेवा करना ही पड़ेगा, इसी से वह परम सत्य जान सकता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम इस विषय पर। तो ये बहुत ही अच्छा एक भागवतम में यह प्रसंग आता है जब भरत महाराज, जो कि महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं, वे पुला आश्रम में तपस्या करते रहते हैं और एक अपनी तपस्याओं द्वारा वे भगवान अपने भक्ति द्वारा भगवान के भाव स्तर तक, भक्ति में वो भाव स्तर तक पहुंच चुके होते हैं और उस स्तर पर पहुंचने के पश्चात उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात एक हिरण के कारण उनका एक रूप से पतन हो जाता है। मैं संक्षिप्त में केवल एक कहानी बताता हूँ, सभी लोग को पता होगा पर फिर भी। तो जब महाराज भरत पुला आश्रम में भक्ति करते रहते हैं, सभी अपने राज्य भार को छोड़कर वह एक वैरागी का जीवन धारण करके वो पुला आश्रम में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो उस समय एक समय क्या होता है कि उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि जब वे भगवान का ध्यान करते थे तब उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती थी, उनके सारे रोम खड़े हो जाते थे और इतने उस स्तर पे, भाव स्तर पे जाने के पश्चात वो क्या इस समय वो जस्ट अपने प्रेम स्तर पर पाने के, उस भगवान के परम भक्ति के परम सफलता परम स्तर को प्राप्त करने से कुछ ही दूर थे। और उस समय क्या होता है, उनके जीवन में एक दूसरा प्रसंग घटता है और एक बार वो तपस्या कर रहे थे तो एक हिरण वहाँ पे, एक गंडकी नदी वहाँ पर पानी, अपना प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए आई और घबरा कर वो पानी पी रही थी और तभी क्या हुआ कि उसे एक सिंह की, एक शेर की दहाड़ सुनाई थी। जोर से जब उसने वो उसकी गर्जना सुनी तब उसके हृदय में इतना भय उत्पन्न हो गया कि वह पानी में कूद के उस पार चली गई। और वो गर्भवती थी और जैसे ही वो गर्जना के भय से वो पानी में कूदी तो उसका गर्भपात हो गया और वह पानी के उस पार चली गई। और जब वो उस पार गई तब प्रसव की पीड़ा से और अपने बाकी मित्रों से, झुंड से विप्र उसका वियोग होने के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए और पानी में उसका जो बच्चा था वो तैर के जाने लगा। अब ये सब प्रसंग कौन देख रहे हैं, भरत महाराज, जो कि इस समय अपनी भक्ति कर रहे हैं। और वो प्रसंग देखने के पश्चात उन्हें उस हिरण पे करुणा आती है और करुणा से वो उस हिरण को अपने पास लेके आते हैं और उसका देखभाल करने लगते हैं। और उसका देखभाल करते करते उनके उस हिरण के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और इतनी तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते और अंत में उसी के आसक्ति कारण उनके प्राण त्यागने पड़ते हैं। वो हिरण के वियोग से एक बार हिरण चले जाता है और उन्हें अपने प्राण त्याग देते हैं और दूसरे जन्म में वो हिरण का शरीर धारण करते हैं क्योंकि वो अपने अंत समय पे हिरण का स्मरण कर रहे थे। और उसके पश्चात हिरण का शरीर ध्यान पाने के पश्चात उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञात रहता है कि मैं पहले जन्म में भरत महाराज था और एक हिरण की आसक्ति से क्या हुआ, मेरा पतन हुआ है। तो अगले जन्म में वो क्या करते हैं, हिरण जैसे ही वो हिरण पैदा होते हैं तो अपनी माता के स्थान को छोड़कर पुनः पुला आश्रम जाते हैं और अपनी भक्ति पुनः वहीं से आरंभ करते हैं। उन्हें पूर्ण ज्ञात होता है कि वो पहले जन्म में क्या थे। उसके पश्चात वो जड़ भरत का जीवन, एक जड़ भरत एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं जड़ भरत के रूप में, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में मैं ये पूरा प्रसंग बताया। अब प्रश्न एक बहुत ही इसमें जो चर्चा करने वाली बात ये है कि ये जो पूरा संदर्भ है, पूरा प्रसंग है, तो हाल में ही मैं इस प्रसंग की चर्चा कर रहा था कुछ भक्तों के संग, कि ये भागवतम में कई बार श्रेष्ठ भक्तों की, महान भक्तों की, राजाओं की, अशुद्ध भक्तों के प्रसंग आता है, कहानी आता है, और उनके जीवन द्वारा हमें कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आचार्य क्या करते हैं, आचार्य का कर्तव्य क्या होता है, उस प्रसंग को आपके जीवन में किस प्रकार से जोड़ा जाए, ये आचार्य का मुख्य कर्तव्य होता है। शास्त्र में जो लिखा गया है, जैसे कि कोई भी शास्त्र में पहला प्रश्न क्या उठता है, अरे ये 1,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा, हमें क्या, ये 5,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा, इसमें हमें क्या। जैसे कि एक व्यक्ति गए कि बोले महाभारत भगवत गीता सुनना अति आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। तो एक व्यक्ति पूछने लगा कि भाई अर्जुन धृतराष्ट्र के क्या लगते हैं, बोले भाई के बेटे लगते हैं। अर्जुन का क्या गया है, बोले जमीन है कोई ले लिया है। तो बोले पारिवारिक मामला है, आपस में झगड़ रहे हैं, मैं काहे को इसका परिवार के बारे में सुनूं, मेरी क्या आवश्यकता। तो कई बार लोग सोचेंगे अरे आपस का झगड़ा किसी, अभी तुम्हारे घर में कोई झगड़ा है तो मैं सुन के उसमें मुझे क्या लाभ होगा, मेरे घर में कम है क्या। तो उसको, उस प्रसंग को किस प्रकार हमारे जीवन में वो किस प्रकार से जोड़ता है, उसका क्या कनेक्शन है, ये कार्य करते हैं आचार्य। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो कई बार हमें भी उसी संदर्भ से अगर हम उसका ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा। जैसे कि इस प्रसंग में यहाँ पे देख रहे हैं कि भरत महाराज कहीं पे तपस्या कर रहे हैं, एक हिरण आया और हिरण के कारण उनका पतन हो गया। तो फिर बोले इसमें हम कहाँ, हम तो कहीं तपस्या करने गए नहीं हैं, और भरत महाराज तो अपने राज्य छोड़े, बड़े बड़े उनके बहुत समृद्ध थे, और हमें तो कुछ छोड़ना ही पड़ा, हम तो मांग रहे हैं अभी अपने पूरे जीवन में, हमें कम पड़ा हुआ है, और हमारे जीवन में ना कोई हिरण आने वाला है, ना हमने कोई राज्य छोड़ा है, तो इस प्रसंग से हमें क्या लेना देना। तो मेरे मन में भी यही प्रश्न आया था, तो मैं सोचने लगा कि ये मेरे जीवन से क्या लेना देना। तो फिर मैं सोचने लगा अरे भागवतम में है और आचार्य द्वारा, तो अगर हम जब प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ने लगे तब समझते हैं कि हर एक के जीवन में वो हिरण आता है। हर एक के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, उसे ये जो प्रसंग है, ये जो इस समय जो घटित हो रहा है भरत महाराज के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रसंग आता है, अलग अलग स्तर पर आता है, परेशान सब होता है। जैसे मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले कि प्रभु जी मैं परेशान हूँ। तो बोले क्या हो गया, बोले पगार कम है। तो उस समय की बात है जब मैं जेजे में रहा करता था, तो उस समय एक व्यक्ति काम करता था, तो मैं पूछा अरे क्या हो गया। तो बोले नहीं, बोला आपका जीवन में समस्या क्या है। तो बोला कि प्रभु जी मेरा पत्नी है, उसके घर पे कोई नहीं है, उसके माता पिता का सबका जो जिम्मेदारी है वो मुझे निभाना पड़ता है। बोला बहुत आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। बोले इतना ही नहीं, मेरा भाई जो है वो किसी काम का नहीं, उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। बोला ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बोले इतना ही नहीं, मेरे जीवन में मेरी पत्नी का दशा इस समय बीमारी से गुजर रहा है, और मेरे बच्चे इस समय छोटे छोटे, और ये पूरा जिम्मेदारी पूरे परिवार का, जितने भी हमारे लोग हैं 10-12 जन, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर, एकमात्र सहारा कौन है, मैं हूँ। बोला भाई आपकी सैलरी कितनी है। बोले 7,000। बोला बाप रे, आप 7,000 सैलरी में, 6 से 7 वर्ष पूर्व की बात है। बोला आप इतना जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, तो बहुत अद्भुत कार्य है। तो बोले फिर आपके प्रॉब्लम है तो आपका क्या समाधान चाहिए। तो बोले बस प्रभु जी एक 3,000 सैलरी बढ़ जाए मेरा, तो मैं सब संभाल लूंगा। बोला 7 का 10,000 हो जाए और आप 12 जन को संभाले, फिर भी आप बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत अद्भुत है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। तो फिर उसी समय की बात है, एक मेरा दूसरा सीनियर मित्र था, वो रेडियोलॉजिस्ट था, रेडियोलॉजी यानी मेडिकल के क्षेत्र में सबसे उच्च ब्रांच माना जाता है, वर्ग माना जाता है, और उसका महीने का पगार, आमदनी या पगार नहीं होता, वो तो ये होते डॉक्टर होते, तो उनका महीने का लगभग 2.5 लाख मिनिमम था। ठीक है, तो वो भी एक बार मेरे पास आया, तो प्रभु परेशान हूँ। तो बोला भाई क्या हो गया? बोले आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या? 2.5 लाख कमा रहे हो, आर्थिक समस्या नहीं, मैंने एक जमीन लिया है वो 80 लाख का है, तो मैंने 25 लाख लोन लिया है, और फिर मेरे मित्रों संगियों को मैंने, कई लोगों को लगभग 10-12 लाख बांट के रखा हूँ, इस समय मैं पूरा कर्जे में डूबा हुआ हूँ और कोई सहारा नहीं है। तो बोला इसका समाधान क्या है? बस ये दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, उसमें 4 लाख पगार हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बोला जब तू 2.5 लाख में नहीं संतुष्ट हो सका तो तू 4 लाख में क्या संतुष्ट होगा? तो मैंने ये दोनों के प्रॉब्लम को देख रहा था, जब तब मैं समझ गया कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी स्तर पे हो, उसके जीवन में तकलीफ आएगा और उतना ही परेशान होगा। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति जो है वो कम परेशान है और ये व्यक्ति ज्यादा परेशान, दोनों उतने ही परेशान थे और दोनों की समस्या एक ही थी, आर्थिक। और अंतर कितना था? एक का 3,000 का, एक का 2.5 लाख का, लेकिन उतनी ही तीव्र रूप से परेशान थे। तो अब हम आरंभ करते हैं। तो इस समय इस हिरण, ये जो भरत महाराज के जीवन में जो हिरण का प्रवेश हुआ है, तो कई लोग कहते हैं कि अरे भरत महाराज एक वैरागी जीवन, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप वैरागी हो, गृहस्थ हो, क्या हो। तो कई बार हमें लगता है अरे फिर से वही कि भरत महाराज तो इस समय वैरागी थे, और हमसे, हमें से कुछ लोग गृहस्थ थे, हमें से कुछ लोग ब्रह्मचारी, हमें से कुछ लोग, हमारे जीवन में क्या लेना देना। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस अपना कार्य करता है। अब भरत महाराज ने एक हिरण का रक्षा किया, तो कई बार प्रश्न आता है कि भरत महाराज ने हिरण का रक्षा किया इसलिए पतन हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भरत महाराज को हिरण का रक्षा करना चाहिए था या नहीं? क्या हिरण का रक्षा करने मात्र से उनका पतन हो गया? अगर वो हिरण का रक्षा नहीं करते तो क्या वो भक्त, श्रेष्ठ भक्त बने हुए रहते थे? ये पहला प्रश्न उठता है। तो इसमें अगर हम सोचेंगे कि अरे अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में, चाहे वो वैरागी हो या गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, और हमारे जीवन में हम देखेंगे कि समझो हम रास्ते से जा रहे हैं और एक एक कोई जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, और वो किसी एक छोटे से खड्डे में गिर गया और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और बहुत ही पीड़ित है, क्या हम उसका सहायता नहीं करेंगे? और उसका सहायता करने से अगर क्या हमें ये भय रहेगा कि अरे भरत महाराज का पतन हो गया, हम इसको छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, क्या हमें उस प्रकार से सोचना है? तो ये एक मनोवृत्ति है कि भाई चाहे कुछ हो जाए हमें अपने भक्ति में करना है, चाहे पूरी दुनिया डूब जाए हमें कुछ देखना नहीं, ये एक मनोवृत्ति हो सकती है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इन्होंने पूरे संसार का जिम्मेदारी लेके, पूरे विश्व का जिम्मेदारी लेके, भार लेके, पूरा विश्व में एक राजा के स्तर से अपने राज्य का पूरा कारोबार संभाल के जब शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, तब क्या भरत महाराज एक हिरण की देखभाल करके शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते? उसमें क्या अंतर हो जाता? तो ये प्रश्न नहीं उठता कि वो हिरण को रक्षा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे मुख्य जो विषय है वो ये आता है कि केवल एक, तो वैष्णव का हृदय स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही मार्मिक रहता है, वो किसी के प्रति बहुत ही पर दुख दुखी होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में गोवर्धन पूजा का समय था और सभी लोगों ने एक भव्य ऐसा गोवर्धन पर्वत बनाया था भोग का, और गिरिराज जी को वो भोग चढ़ाया गया और सभी लोगों ने क्या किया, अपने पत्तल में उसे खाने लगे। और फिर वो उत्सव समाप्त हुआ और प्रभुपाद अपने बिल्डिंग के दूसरे मंजिले पे जाके विश्राम करने लगे। तो विश्राम करते हुए उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो आवाज़ सुनाई दी तो प्रभुपाद गए और बाहर देखने लगे। तो क्या देखे कि एक जो केले का पत्ता सब लोगों ने ऐसा खाने के बाद ऐसे फेंक देते थे, एक वहाँ पे, जैसे अभी भी मायापुर में जाओगे तो वो आप खाने के बाद पत्तल को एक जगह पे भेजते हो, एक बड़ा उनका ये रहता है। तो सभी लोगों ने उस प्रकार से पत्तल को फेंका हुआ था और प्रभुपाद को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। और प्रभुपाद अपने दूसरे मजले से, इमारत से, वो नीचे देखे और देखे कि कुछ बच्चे और कुछ कुत्ते उस केले के पत्तों पे जो जो भोजन, जो प्रसाद छुटा हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। तो बच्चे और दोनों क्या कर रहे हैं, जो प्रसाद बचा हुआ है, तो बच्चे लोग लाठी लेके उस कुत्ते को भगा रहे हैं और कुत्ते लोग उस बच्चों पे भौंक रहे हैं कि वो भाग जाए, ताकि उनको ये जो केले के पत्ते में जो प्रसाद छुटा हुआ है उसे प्राप्त कर ले। और वो देख के श्रील प्रभुपाद की आंखों में अश्रु आ गया। और तब श्रील प्रभुपाद ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि मायापुर के 10 मील रेडियस में चारों तरफ क्या होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और तब से वहां पर अन्न क्षेत्र चालू हुआ था। तो अब प्रभुपाद ने उस बालकों के प्रति, उस बच्चों के प्रति अगर उनके हृदय में करुणा भावना आ गई, तो क्या ये भौतिक लक्षण है? क्या इसे हम एक बोलेंगे, अरे नहीं, प्रभुपाद ने देखा कि भूख, अरे भूख तो भौतिक है, तो शरीर से लेते, हम तो आत्मा है, आत्मा की प्रगति होनी चाहिए, शरीर शरीर से कुछ लेना, क्या ये भौतिक लक्षण है? नहीं, भौतिक लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर भरत महाराज एक हिरण को देख रहे हैं, वो किसी स्थिति में है और उसका रक्षण करने गए, तो ये भौतिक लक्षण है। अगर हम किसी की रक्षा कर देंगे तो क्या हमारा पतन हो जाएगा? उस प्रकार की मनोधारणा रखना भी बहुत भयंकर है। कल अगर हम किसी अवस्था में चले गए, अगर हम कहीं पे गिरे पड़े हुए और हम हाथ मांग रहे हैं और दूसरा भक्त बोले नहीं तेरा शरीर गिरा हुआ है, तेरा आत्मा उठा हुआ है, जप कर, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये तो किसी भी विषय को एक दृष्टिकोण से देखना और समझना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे भरत महाराज क्या कर रहे हैं, भरत महाराज ने उस हिरण की रक्षा की, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा विशेष गलत कार्य नहीं था। लेकिन भरत महाराज ने क्या किया, कुछ समय के पश्चात उन्हें ये लगने लगा कि मैं केवल एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस हिरण की रक्षा कर सकता है। तो ये क्या हुआ, ये अहम की भावना आई। तो व्यक्ति क्या है, तो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारावली काम कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। तो व्यक्ति जब अहम की भावना उसके हृदय में आती है, तो क्या करता है, वो आत्मेंद्रिय, अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा करने लगता है, या उसे लगने लगता है कि मैं किसी को रक्षण प्रदान कर सकता हूँ, मैं किसी को कोई चीज उत्पत्ति कर सकता हूँ, किसी चीज का विनाश कर सकता हूँ। ये जब अहम की भावना लेश मात्र भी जब तक हमारे अंदर है, तब तक हम क्या करेंगे, परेशान रहेंगे। तो ये जो अहंकार है, अहम, तो हम भी अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं हमारे जीवन में, किंतु अगर हम वो कार्य अहम की भावना से नहीं करेंगे, तो हम परेशान नहीं होंगे, हम आसक्त नहीं होंगे। तो अहम कैसे हमें परेशान करता है, जैसे हम बोलते हैं कि अरे व्यक्ति को चिंता हो गया, व्यक्ति परेशान है, मुझे चिंतित है। तो चिंता, अगर मेडिकल डेफिनेशन देंगे, अरे आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, आपकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी है और आपकी क्षमता बहुत कम है, वो सब वगैरह वगैरह हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में चिंता क्या होता है, हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, हम सोच रहे हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे एक अपना अनुभव से अगर हम सोचेंगे कि चिंता मतलब कई समय पे कोई विचार हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर होते हैं उसे बार बार सोचने के लिए, चाहे हम कोई भी कार्य, अन्य कार्य करते हो, हम जप करते हो हमें वो विचार आएगा, हम दूसरा कार्य करते हो हमें विचार आएगा, वो हमें विवश करेगा कि आप इस चीज को सोचिए, इस विषय पे सोचिए। और हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम विवश हो जाते हैं उसके बारे में सोचने के लिए। इसे चिंता कहते हैं। तो क्या करता है, चिंता हमें विवश करता है। तो हम अन्य सभी कार्यों में लगे हुए रहेंगे, लेकिन हमारा क्या है, ध्यान कहाँ जाएगा, उसी बार बार उसी विषय पे जाएगा, और हम उस बारे में सोचते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। तो जब हम इस प्रकार, और ये चिंता का उत्पत्ति कैसे होता है, तो जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, एक भक्त की मनोधारणा कैसी होती है, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी 95 वर्ष की आयु में, 95 वर्ष की आयु में चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ लिखना आरंभ कर रहे हैं, सोचिए उनका जो स्तर है, 95 साल के आयु में वो एक ग्रंथ लिखना आरंभ कर रहे हैं जो हम पूरे जीवन में पढ़ नहीं पा रहे, और वो उसको लिखना आरंभ कर रहे हैं, और वो इसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं। आमी वृद्ध जरातुर लिखी एका पये कर मने स्मरण किछु न है, न देखी नयने न सुनिए श्रवणे तबु लिखी यही बड़ा विस्मय। तो बोल रहे हैं कि आमी वृद्ध जरातुर लिखिए कापिते कर मन स्मरण किच्छु न है, मेरा आयु खत्म हो गया है, हाथ कांप रहे, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर भी मैं चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहा हूं, ये बड़ा विस्मय का कार्य है। लेकिन उनका एकमात्र आश्रय क्या है, भगवान। तो अहम की भावना जब आती है तब व्यक्ति को भय होता है, उसको चिंता होती है, उसको व्याकुलता होती है कि ये कार्य पूर्ण होगा कि नहीं। और व्यक्ति जब भगवान पे निर्भर है तो उसे किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं होती। जैसे ही हम अपने, तो अगर हम शास्त्रों को देखेंगे तो इस अहम की भावना से अलग अलग रोग का अलग अलग प्रकार से पतन होता है। तो एक लोगों का पतन कैसा होता है, डिप्रेशन, जब वो हार जाते हैं, जैसे कि अहम, मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो अगर उस व्यक्ति को उस कार्य में सफलता, तो कई क्षेत्र होते हैं जब हम वो कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, तो अहम के कारण जब हमें सफलता प्राप्त होती है तब उसका परिणाम क्या होता है, अहंकार, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये हासिल किया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अन्य लोगों से मेरा स्तर आगे है। जब ये भावना व्यक्ति के अंदर आती है तब वो क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है, और जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है व्यक्ति क्या करता है, निरादर और दूसरों के प्रति अपराध करना आरंभ करता है, और जैसे ही वो अपराध करना आरंभ होता है तो कुछ समय के बाद उसका क्या होता है, पतन होता है, विनाश होता है। इसका अगर हम प्रमाण देखेंगे तो भागवतम में कई सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे इंद्रदेव, उनमें किसी प्रकार का अहंकार आ गया कि मैं सबको वर्षा दे रहा हूँ, मैं अपने क्षमता, मेरे क्षमता के कारण ये सभी लोगों को वर्षा प्राप्त होती है और इनके जीवन में समृद्धि है, वो उनके जीवन में उस अहम का स्थान आया। और दूसरा वापस प्रसंग आता है पुनः इंद्र जी के ही संदर्भ में, कि वो किस प्रकार अहम आने के कारण बृहस्पति जी का सम्मान नहीं करते, और फिर वृत्रासुर का ये पूरा प्रसंग होता है और उनका पतन होता है। तो ये तो एक अच्छी बात है, चलो फिर भी क्या है, व्यक्ति किसी प्रकार के उसके हृदय में अहम आता है, वो सफलता प्राप्त करता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन इसी कार्य में क्या होता है, जैसे ही हम सोचने लगते कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तुरंत ख्याल क्या आता है कि अरे मेरी क्षमता तो सीमित है, मेरी क्षमता क्या है, सीमित है, और ये कार्य, कोई भी कार्य करने से उसका परिणाम हमारे, हम सोच नहीं सकते। कोई भी कार्य चालू करो, 10 प्रकार के प्रश्न आते, क्या ये कार्य मैं कर पाऊंगा, कल ऐसा होगा तो क्या हुआ, कल ऐसा होगा तो क्या होगा, कल ऐसा अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तुरंत 10 प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, और ये जो अस्थिरता है उसकी व्याकुलता हमें सतानी लगती है, क्योंकि हमारी क्षमता जो है वह सीमित है। तो किसी भी कार्य को करते हुए अगर हमारे हृदय में अहम की भावना आएगी तो क्या होता है, हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है, किसके प्रति, अस्थिरता के प्रति। कोई भी कार्य ले लो, अगर हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हमें यहां से अपने पूरा एक चार पांच जन को लेके यहां से दिल्ली जाना है या कहीं पे धाम में जाना है, तो तुरंत हमारा प्रश्न, अरे अरे टिकट कंफर्म होगा कि नहीं, ट्रेन जाऊंगा तो ट्रेन छूटेगा कि नहीं, सब लोग चढ़ेंगे कि नहीं, कुछ सामान पीछे रह गया तो, टिकट भूल गया तो 10 प्रश्न आते हैं और निरंतर वो कुछ ना कुछ व्याकुलता हमारे मन में रहता है। तो ये क्या होता है कि वो कितना भी कर ले, हमारे मन में वो व्याकुलता उत्पन्न होता ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अहम की भावना के कारण, जो अभी यहां पर भरत महाराज क्या सोच रहे हैं, वो अपनी भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन फिर वो भक्ति करते करते आँख खोल के देखते हैं, अरे हिरण भाग तो नहीं गया, वो आ मेरे समीप है या नहीं, क्या वो मेरे रक्षण में है या नहीं, उसको कोई दूसरा उसको किसी प्रकार का हानि तो नहीं दे रहा है। तो जब ये धारणा आ जाती है कि नहीं मैं ही एक करता हूं, मैं जो हूं किसी को रक्षण प्रदान, इसलिए कोई भी प्रार्थना लेंगे किसी भी महान भक्त का, वो बोलेंगे भगवान आप ही संसार के रचयिता हैं, आप ही संसार के पालन करता है और आप ही से नष्ट करेंगे। ये किस भावना से आती है कि मेरा स्तर जो है वो किसी कोई मायने नहीं रखता, मैं किसी भी स्तर पे हूँ, मेरा मैं इस, तो प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं इस संदर्भ में कि इसी प्रकार हमें अपने जीवन में कई बार प्रचार करने हेतु, तो हम कभी भक्तों को प्रचार करते हैं, हमें क्या होता है भौतिक वस्तुओं से ये लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है या अपने थोड़ा उनके स्तर पर आना पड़ता है ताकि हम उनसे संबंध स्थापित कर सके। तो जैसे कि इस समय ये जो भरत महाराज है वो एक हिरण को रक्षा करने के लिए थोड़ा नीचे झुके, उसी प्रकार एक प्रचार करने हेतु हमें अपना स्तर थोड़ा नीचे आके हमें क्या करना पड़ता है, लोगों से संबंध स्थापित करना पड़ता है, लेकिन वो उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारे हृदय में वो अहम की भावना नहीं आ रही। तो प्रभुपाद कहते हैं हम पूरे विश्व को भक्त नहीं बना सकते लेकिन हम कुछ को प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए कि मैं अगर कोई सी व्यक्ति की, मैं ही इस व्यक्ति का कर्ता धरता हूं, अगर कोई व्यक्ति को हम थोड़ा सा हलवा खिला के उसको जप माला पकड़ा दिए और वो 16 माला करने लगे ये न के न प्रकारे, और कल हमारे हृदय में ये भावना आ जाए कि अरे इसे मैंने भक्त बनाया, ये क्या था, ये किसी काम का नहीं था, इसको मैंने माला पकड़वाया और मेरे कारण ये भक्ति कर रहा है, ये भावना आ गई और हम हमें ये लगने लगे कि मेरे कारण ही ये व्यक्ति क्या है भक्ति में है और मेरे कारण ये भक्ति में टिका हुआ है, ये एक धारणा हो सकती है। तो व्यक्ति कोई भी कार्य में जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है कि इस कार्य की पूर्ति, इस कार्य का रक्षण, इस कार्य का कर्ता धर्ता केवल मैं हूं, तुरंत हमारे हृदय में दूसरा प्रश्न क्या उठता है कि आपकी क्षमता सीमित है, और फिर उसका परिणाम क्या होता है, हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है, और उसका परिणाम क्या होता है, व्याकुलता के कारण हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो साधना है, हमारा जो मेडिटेशन है, वो भटकता है। जैसे कि भरत महाराज को पहले लगा कि मैं इस हिरण का रक्षा करूंगा, उसको रक्षण प्रदान किए वहां तक ठीक था, लेकिन उसके रक्षण प्रदान करके उसे अपने आश्रय में रख के ये सोचना कि केवल मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस हिरण को पूरे संसार में रक्षण प्रदान कर सकता हूं, वो गलत हो गया, ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ, उन्हें व्याकुलता उत्पन्न होने लगी कि अगर मैं इसका रक्षण नहीं करूंगा तो इसकी क्या होगी, इसे हानि प्राप्त होगा और इसे मृत्यु प्राप्त हो सकती है, और फिर उसके उन्हें क्या होने लगा, फिर वो व्याकुल होने लगे, वो हमेशा उसे अपने साथ रखने लगे, वो जब भी किसी भी प्रकार का कार्य करते थे उसे अपना साथ रखने लगे। तो जब हम अपने कार्य को अपने साधना से जोड़ देते हैं, तो बोले कि हमें कब पता चलेगा कि अहम ने हमें प्रभावित किया है, अहम की भावना के कारण हम प्रभावित हो गए, हमें कब पता चलेगा, जब हमारा भगवान के प्रति आश्रय विचलित हो जाता है, भगवान के प्रति हमारा जो साधना है और भगवान के प्रति हमारा जो लक्ष्य है, उस ध्यान को जब तोड़ के हमारा कार्य हमारे साधना को विचलित करने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, अहम की भावना है, हम अहं हमारे हमें ऐसा लग रहा है कि ये कार्य केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई इसे नहीं कर सकता, तो वो हमें क्या करता है, धीरे धीरे हमें पतन की ओर ले जाता है। तो यहां पर ये जब भरत महाराज इस प्रकार से उनका ये हुआ, पतन हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे हिरण के इसमें आए और उन्होंने क्या किया, हिरण के आयु में भी, उस जीवन में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था और उन्हें पूर्ण पता था कि मैंने पूर्व जन्म में क्या गलती किया था। उसके पश्चात हिरण के जन्म में बहुत सावधानी पूर्वक अपना भक्ति किए और उसके पश्चात उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जड़ भरत के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य करते थे। एक ब्राह्मण परिवार में थे, उनके वातावरण बहुत अनुकूल था और उन्होंने अपने भक्ति को अच्छे से निभाया। तो अब यहाँ पर आने के पश्चात उन्हें रहुगुण मिलते हैं और रहुगुण को वो संदेश देना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार उन्हें इस संसार का जो ये पूरा हमारा जो जीवन है उसका मूल मात्र क्या है, मन है। मन के कारण हम क्या इस संसार में अलग-अलग योनियों में जा रहे हैं। उसके पश्चात बताते हैं किस प्रकार ये संसार जो है वो नाश्वर है। तो वो दो प्रकार से रहोगुण को बताने जाते हैं कि किस प्रकार आपको ये संसार से त्याग कर ये ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये बहुत ही सुंदर ये श्लोक यहाँ पर वो बोलते हैं कि रहोगुण उनके बातों को समझ नहीं पाते, जड़ भरत को, जड़ भरत के बातों को। तो रहोगुण को वो कहते हैं, रहोगुणात आप कुछ भी कर लो, कहते हैं आप जो करना है कर लो, इस पूरे संसार में आपको जो पता है कर लो, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। रहोगुण इतना तपसा नहीं आती, आप जाके तपस्या करो। न चेत जचा निर्वपणाद गृहत्वा, आप सभी प्रकार के गृहस्थ आश्रम के आप भगवान की आराधना करो, अपने आश्रम का सभी प्रकार के आश्रम का पूर्ण नियम पूर्वक उसका पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और कठोर तपस्या करो, जो करना है कर लो, आपको भगवान के प्रति ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। आपको भगवान के प्रति ज्ञान कब हो सकता है, बिना महत पाद रजोभिषेक। जब तक किसी भक्त का आश्रय नहीं लेते तब तक क्या होता है, हमें भगवान के प्रति ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये संदर्भ में कि हमें भगवान के प्रति आश्रय, अब प्रश्न उठता है, अरे भरत महाराज ने उस स्तर पे जाके भी उनका अगर डिविएशन हो सकता है, वो भटक सकते हैं, तो फिर हम क्या है, हमारा इतनी भक्ति भी नहीं है और हमने कोई राज्य छोड़ के भी नहीं आए, हमारा उतना तपस्या भी नहीं है, उतना दृढ़ता भी नहीं है, तो फिर भक्ति करके हमारा क्या, हमें क्या, हमारा क्या गारंटी है। तो उसी के संदर्भ में कहते हैं कि आप कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी को लगता है कि मैं कठोर तपस्या से, ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने आश्रम का पालन करने से भगवान की भक्ति कर सकता हूं, तो उसका बहुत बड़ा भ्रम है। ये अहम की भावना अगर हो कि अरे मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं नियमित रूप से अपना सभी कार्यों का पालन करता हूं, मैं एकदम अपने सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा पूर्वक करता हूं, मैं भक्ति कर सकता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, अगर किसी भी स्तर पे हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भगवान के कृपा के बिना कोई भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से अगर बोला जाए कि 1 घंटे के अंदर आप क्या करो, दिल्ली चले जाओ, तो व्यक्ति कितना भी बड़ा दौड़ने वाला ओलंपिक अवार्ड स्वर्ण विजेता क्यों ना हो, फिर भी वो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा ट्रेन नाका पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर वो प्लेन में बैठता है तो 1 घंटे में वो दिल्ली पहुंच सकता है। तो हमारी क्षमता कितनी भी बड़ी हो, पर इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मम माया दुरत्या, दैवीश गुणमयी मम माया दुरत्या, हम कितना भी प्रयास कर लेंगे इस माया को पार करना हमारे क्षमता के बाहर है। तो फिर एकमात्र हमारा सहारा क्या है, भक्त है। तो ध्रुव महाराज बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। वो बोलते भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। ध्रुव महाराज को अभी भगवान का दर्शन प्राप्त हो चुका है और वो प्रार्थना किए कि मुझे अपने पिता से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के इतना मुझे वरदान चाहिए, उनसे उनके साम्राज्य से भी श्रेष्ठ साम्राज्य चाहिए। और जब भगवान आते हैं और उनकी भक्ति पूर्ण रूप से फलित हो जाती है तो क्या कह रहे हैं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। आपके भक्त जो निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका संग मुझे प्रदान करो। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। वो पूर्ण रूप से पवित्र होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। तो इस भक्तों का संग, भगवान पूछते हैं कि भाई तुमको भैये भक्तों का संग क्यों चाहिए? भक्तों का संग अगर आप ले रहे हो लेकिन आप भौतिक जगत में तो पड़े रहोगे, पार कैसे करोगे? तो बोलते हैं ये न अंजसा उल्बणम उरुव्यसनम भवाब्धि। ये जो भवाब्धिम है, ये जो भव सागर है, जो उरु है, जो बहुत ही भयंकर है, उसो में क्या करूंगा, अंजसा बड़े आसानी से प्राप्त पार कर जाऊंगा। कितनी आसानी से प्राप्त पार कर जाओगे? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नशेड़ी है और वो उसे अपने जो उसका दारू का बॉटल है उसे पी के कैसे वो चलता है, उसे एक उसे किसी चिंता नहीं होती कि सामने से कोई आ रहा है जा रहा है, गाड़ी आ रहा है क्रॉस कर रहा है, उसे कुछ चिंता नहीं होती, वो पी के अपने दुनिया में अपने मस्त झूम झूम के चलता है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं नेश्ये भवत गुण कथा अमृत। भगवान मैं आपके इन भक्तों के संग में क्या करूंगा, आपके गुण कथा अमृत, इस गुण कथा अमृत इस प्रकार के दारू को मैं पीऊंगा पान मत्त है, और पूर्ण पागल होके घूमूंगा और भवसागर प्राप्त पार कर जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ध्रुव महाराज का ये दृढ़ता है। तो यही प्रभुपाद एक तात्पर्य में यहाँ पे इसी विषय में लिखते हैं कि भरत महाराज के प्रसंग से एक विशेष ज्ञान क्या मिलता है कि वो किस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं और कितना कठोर तपस्या किए। जैसे भरत महाराज ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा जो ये है अपना समृद्धि को त्यागा। उन्होंने अपना सारा समृद्धि को, तो अगर कोई व्यक्ति रास्ते पे अगर कोई भिखारी बैठा हुआ है और एक दो रुपए के भीख मांग रहा है और बोले बोले कि मैं ये संसार का त्याग करता हूँ, मुझे इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, तो उसको वैरागी नहीं बोला जाता, उसे कहा जाता है उसका मजबूरी है, उसे तेरे पास है ही क्या त्यागने के लिए। अगर लेकिन कोई राजा जब ये पूरा संसार त्याग देता है तब उसे कहा जाता है कि हाँ। तो बहुत लोगों ने जय धृतराष्ट्र, उनको भी जब विदुर जी आए और बोले कि अरे आपके दांत नहीं है और गले से अलग अलग प्रकार की आवाज आ रही है, अभी समय हो गया है और आपके जिन्होंने आपके सभी पुत्रों का हत्या किए उनके टुकड़ों पे फेंके हुए टुकड़ों पे आप जीवन जी रहे हो, छोड़ो इसको भागो यहाँ से, उन्होंने भी त्याग किया, लेकिन उनके त्याग को इतना बड़ा त्याग नहीं माना जाता क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो उन्होंने अच्छा कार्य किया, ऐसा नहीं कि कोई बुरा कार्य किया। लेकिन भरत महाराज तो कहते यो दुस्त्यजन दार सुदान सुहृत राज्यम हृदि स्पृश जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। यो दुस्त्यजन, जो बहुत ही कठिन है त्याग करना, दुस्त्यजन दार सुतान अपने पत्नी और पुत्रों को, सुहृद राज्यम अपने साम्राज्य को, हृदि स्पृश जो बहुत ही प्रिय है उसे उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया। कैसे, जहौ युवा, युवा अवस्था में, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में, जहौ युवा एव, एक युवा होने के पश्चात भी उन्होंने ये सब इतना महान साम्राज्य जब जिसे भोग करने में उनको पूर्ण शक्ति थी लेकिन उस समय उन्होंने त्याग दिया, तो वो आश्चर्य माना जाता है। लेकिन वो अंतिम लाइन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका विशेषता क्या था, उन्होंने इसको क्यों त्याग पाए, उत्तम श्लोक लालसा। जैसे एक बच्चे को अगर उसके हाथ में थोड़ा सा टॉफी हो, चार आने का जो पहले जमाने में चार चार आता था, उसके अगर दो दो उसके हाथों में पकड़ा दो और बोलोगे दो तो नहीं देगा, उसको अगर जबरदस्ती छीन लो तो रोने लगेगा। लेकिन अगर क्या करो, अगर दो बड़े बड़े रसगुल्ला या दो बड़ा बड़ा गुलाब जामुन उसके ले जाके दो तो टॉफी छोड़ देगा, रसगुल्ला पकड़ेगा। तो इस संसार में अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज त्यागना है तो उसको प्रति क्या है, उत्तम श्लोक लालसा होना आवश्यक है। तो प्रभुपाद कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा का अर्थ क्या है, भगवान के प्रति अगर आसक्ति है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, तो ही इस संसार में हम क्या होगा, अपने अहम के द्वारा उत्पन्न की हुई जो आसक्ति है उसको त्याग कर पाएंगे। नहीं तो इतना आसानी से हम कोई भी चीज त्याग नहीं, अरे कोई चीज छोटा सा भी चीज अगर हम उसको धारण करते, जैसे कि एक बार ये हर एक व्यक्ति को अपने स्तर अपना जो कार्य है वो बहुत प्रिय लगता है। ठीक है, तो अंत में सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि भरत महाराज के जीवन से एक मुख्य जो ज्ञान हमें लेना है, कि पहला कि अगर हमें किसी प्रकार से भी इस भौतिक संसार से दूर जाना है तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना आवश्यक है, उत्तम श्लोक लालसा होना आवश्यक है। और दूसरा कि अगर हम प्रयास करने लगे, परिश्रम करने भी लगे, लेकिन हमेशा भय क्या होगा, हम किसी भी समय क्या होंगे, अपने पथ से भटक सकते हैं। तो उसका उत्तर क्या है, वो यहाँ पे जड़ भरत जी, वही भरत महाराज जड़ भरत जी के जब जन्म में आते हैं तो अरगुणा महाराज को कहते हैं विना महत पाद रजोभिषेकम, कि सबसे आसान तरीका क्या है, हम भरत महाराज जैसे श्रेष्ठ नहीं है, हमने कोई राज्य त्यागा नहीं है, ना ही हम भाव स्तर पे गए, ना ही हमें भगवान ने दर्शन दिया है, लेकिन फिर भी अगर हमें भक्ति प्राप्त करनी है और अपने स्तर पे, चाहे किसी भी स्तर पे कोई व्यक्ति हो, और उस स्तर पे एकमात्र आशा क्या है कि वो भौतिक संसार को पार कर सकेगा, भगवान के भक्ति को पार कर सकेगा, तो यहाँ पर रघुगुण महाराज कहते हैं कि महत पाद रजोभिषेकम, जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवाहता, केवल भक्तों का संग एकमात्र सहारा है जिससे कि आप इस संसार को प्राप्त कर सकते हो, पार कर सकते हो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं पुनश्च भूयात भगवत्यनंते, कि हे भगवान अगर मुझे वापस जन्म लेना पड़े तो क्या करो, रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टि मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, मैत्रियस्तु सर्व महत्सु याम याम उपयामि सृष्टि। वो बोलते हैं कि भगवान आपके प्रति आकर्षण हो और आपके भक्तों का संग हो, और वो ये नहीं, वो उनको 7 दिन ही शेष बचा है और वो भागवतम सुनने जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उनके समक्ष बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं भगवान मुझे पुनश्च भूयात भगवती आनंद, मुझे वापस जन्म लेना पड़े मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके भक्तों का संग होना चाहिए और आपके प्रति आकर्षण होना चाहिए। आपके प्रति आकर्षण होगा तो मैं इस भौतिक संसार के आसक्तियों से दूर होऊंगा, और आपके प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न हो सकता है, भक्तों के संग से। और ये बोल सकते हैं कि अरे आरंभ में भक्तों का संग अनिवार्य है, लेकिन बाद में जाने के बाद भक्तों का संग की क्या विशेषता हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को संदेश देते हैं तो कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेमे जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। वो कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कि अगर आपको भक्ति आपके हृदय में जन्म होने की कोई संभावना है, हमारे हृदय में अगर भक्ति जन्म लेने की किसी प्रकार का संभावना है तो उसका क्या कारण हो सकता है, साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म उसका मूल क्या है, साधु संग, केवल भक्तों के संग में ही भक्ति की उत्पत्ति होती है, और वो व्यक्ति किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, कृष्ण प्रेमे जन्मे, वो प्रेम स्तर पे भी क्यों ना पहुंच जाए, तेहो पुनः मुख्य अंग, फिर भी उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या रहता है, साधु संग। रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रेयो मध्ये कोन श्रेय जीवे रहय सार, श्रेयो में कौन सा श्रेय है जो सर्वोत्तम है, सबसे लाभदायक हितकारी वस्तु इस संसार में कौन सा है, तो रामानंद राय कहते हैं कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार, कि हे प्रभु कृष्ण भक्ति संग सबसे श्रेय सबसे उत्तम कार्य क्या है कि कृष्ण भक्त संग, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और फिर पुनः कहते हैं दुख मध्ये को न दुख हय गुरु तार, दुखों में सर्वश्रेष्ठ दुख क्या है। तो रामानंद राय कहते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पार, कि हे भगवान अगर सर्वश्रेष्ठ कोई दुख है तो वो क्या है, आपके भक्तों के जो संग है वो अगर हमसे दूर हो जाए, अगर आपके भक्तों का संग दूर हो जाए तो वो सबसे दुखमय है, और सबसे लाभदायक क्या है, भक्तों का संग। और हमारी परिस्थिति क्या है, हमारे पास सब है लेकिन उसकी कीमत नहीं है। उसका जैसे एक बार महाभागवत प्रभु ये बता रहे थे, पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन वो जाने लगे एक पर्वत पे। अर्जुन बोले कि आप हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते और वृंदावन वृंदावन करते रहते हैं, आपको क्या ऐसी विशेषता है वृंदावन, क्या ऐसा विशेष चीज है कि आप वृंदावन वासियों रजवासियों और वृंदावन के प्रति आपका विशेष लगाव है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है आओ मेरे साथ। तो वो क्या करते हैं, अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं, तो रथ में बिठा के एक पर्वत पर चढ़ने लगते हैं। और पर्वत पर चढ़ते 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 पर्वत की, तो एक विशेष प्रकार का पर्वत था, वो सफेद पर्वत था। तो चढ़ते चढ़ते वो उस पर्वत की चोटी पे आते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि ये कहाँ ले आए, तो बोले पर्वत की चोटी पे थोड़ा लक्ष्य पूर्वक देखो, तो सभी पर्वतों की चोटी पे कोई व्यक्ति बैठे हुए थे। तो कृष्ण पूछते हैं ये लोग कौन है पता है, तो बोले हाँ शायद स्वभाव ये सप्तऋषि है। तो बोले सप्तऋषि, तो फिर वो पूछे अर्जुन ने पूछे कृष्ण को कि ये सप्तऋषि यहाँ कर क्या रहे, तो बोले तपस्या कर रहे हैं कि वृंदावन में स्थान प्राप्त करने के लिए। तो बोले कब से तपस्या कर रहे हैं, तो बोले कि कृष्ण कहते हैं कि इन्होंने क्या हुआ, पहले इस स्थान पर जब यहाँ पे समतल जमीन था तब यहाँ पे तपस्या करने आए थे, और इन्होंने एक आयु तपस्या किया, और तपस्या करने के पश्चात क्या हुआ, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इनके जो हड्डी थे वो केवल शेष हो गए, जो कंकाल थे वो शेष हो गए, पुनः दूसरा जन्म लिया और वापस यहाँ पे आए और पुनः तपस्या किया और पुनः अपना शरीर त्याग दिए और पुनः उनका जो कंकाल था वो रह गया, और पुनः उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, ऐसे प्रकार से वो तपस्या करते गए। तो बोले ये जो पहाड़ चढ़ के आ रहे हो ये इनके हड्डियों का पहाड़ है। तो बोले क्या इतना कठोर तपस्या और अभी तक आपने वृंदावन में उनको स्थान नहीं दिया, तो इनको भगवान में प्रार्थना करता हूँ दे दो, इतना कठोर तपस्या कर रहे वृंदावन में स्थान दे दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है आप कहते हैं तो मैं इनको वृंदावन में स्थान देता हूँ। तो भगवान कैलकुलेट करने लगे उनकी तपस्याओं के बल पे और भक्त की आग्रह पे, तो उन्होंने सप्तऋषियों को कहा कि हे सप्तऋषियों आपकी तपस्या पूर्ण होने की है, मेरे भक्त ने आपके प्रति कुछ अर्जी लिखी है, तो आप लोगों को मैं वृंदावन में स्थान प्राप्त करता हूँ देता हूँ, तो आपके तपस्या के अनुसार आपको 3 दिन में वृंदावन, 3 दिन के लिए वृंदावन प्राप्त होगा। तो अर्जुन बोले अरे इतना तपस्या करने के पश्चात केवल 3 दिन, 12 दिन का तो हम यात्रा जाके आते हैं, यहाँ पे वृंदावन हम रोज जाते हैं। लेकिन क्या है, मैंने ये प्रसंग क्यों कहा क्योंकि हमें क्या है उसका कीमत नहीं पता, क्योंकि सहजता से प्राप्त हो गया है, उसकी कोई महत्व ये नहीं है। जैसे और एक लास्ट एक उदाहरण दे के मैं अंत करूँगा कि एक बार बहुत ही संतोष के ऊपर एक व्यक्ति को किसी किस प्रकार हर क्षण में संतोष रखना चाहिए, और इसी विषय में ये उदाहरण है कि एक बार एक साधारण मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, कुछ कमा के अपना कुछ वो परिवार चलाता था, तो लेकिन गरीब था, संघर्ष करता था अपने परिवार को संभालने के लिए। और उसी दूसरी ओर एक व्यक्ति था बहुत ही, जैसे अगर आप किसी या हाजी अली या कुरला के पास जाओगे तो कुछ कुछ एकदम बहुत ही भिक्षुक होते हैं, उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो किसी प्रकार से उनके सामने एक कटोरा रखा हुआ होता है और वो भिक्षा मांगते हैं और किसी प्रकार अपना जीवन चलाते हैं। देखा, अगर आपके कभी व्यक्ति को देखा होगा किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो किसी प्रकार से वो भिक्षा मांगते हैं। पहले तो घर में आया करते थे किसी एक बैसाखी को लेके। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति है मान लीजिए। अब दोनों के जीवन में एक प्रकार का दुख है। एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, वो कुछ कमा रहा है, ठीक ठाक है, परिवार को चला रहा है, लेकिन सोच रहा है कि मेरे जीवन में कुछ और आनंद आ जाए। और एक यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, उसको दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, किसी प्रकार वो भी अपना जीवन चला रहा है। अब दोनों क्या करते हैं, भगवान से एक दिन प्रार्थना करते हैं, और दोनों के जीवन में क्या होता है, चमत्कार होता है। पहले व्यक्ति के जीवन में चमत्कार क्या होता है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति था उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। तो व्यक्ति जो 1 करोड़ की लॉटरी लगे, वो कितना उसको आनंद होगा, और वो आनंद में झूमने लगता है, नाचने लगता है, सभी को बताने लगता है कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी। और ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसके जीवन में तो उसको एक प्रकार का आनंद होता है, ये जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति था। और दूसरा व्यक्ति क्या है, इसके जीवन में क्या चमत्कार होता है कि इसके दोनों हाथ और दोनों पैर पुनः वापस आ जाते हैं। तो इसे भी एक प्रकार का क्या होता है, आनंद होता है। दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ आनंद होता है। अब मेरा प्रश्न है कि इन दोनों में अधिक आनंद किसको होता है? उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति को अधिक आनंद होगा कि यह व्यक्ति जो भिक्षुक है, जिसको दोनों हाथ दोनों पैर नहीं थे, उसको दोनों हाथ दोनों पैर मिल रहे हैं और वो नाच रहा है, झूम रहा है, सभी को अपने आनंद के बारे में बता रहा है। तो दोनों में कौन मानता है, थोड़ा हाथ उठा के बताइए, कि भिक्षुक को आनंद अधिक आनंद होगा? कितनों को लगता है कि वो जो मध्यम वर्ग है, वो 1 करोड़ का लॉटरी मिला है, उसको भिक्षुक से अलग आनंद हो, अधिक आनंद होगा? हाथ उठाइए। कोई नहीं। तो हम क्या लग रहा है, किसे अधिक आनंद होगा? भिक्षुक को अधिक आनंद होगा। क्यों? क्योंकि उसको दो हाथ और दो पैर वापस आए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम में से कितनों के पास वो आनंद, वो हाथ और पैर है? सभी के पास है, लेकिन हम वो आनंद का अनुभव नहीं कर रहे। हमारे पास भी वही चीज है, लेकिन वो आनंद का अनुभव जो वो भिक्षुक उस समय, उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं, वो अभी भी भिखारी है, अगले दिन वापस कटोरा लेके भीखी मांगने वाला है, लेकिन इस समय वो संसार में अपने आप को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा है और अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति समझ रहा है, बहुत ही आनंदित समझ रहा है। लेकिन उसको प्राप्त क्या हुआ है, दो हाथ और दो पैर, जो कि हम में से सबके पास है, लेकिन फिर भी हम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए तड़पाया नहीं गया है, हमें उसकी कीमत पता नहीं है, उसका मोल पता नहीं है। तो ये भक्ति जो कृष्ण कहते हैं कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनारुगा जनिनानुराग। भगवान कहते हैं कि मेरे पास जो भी धन था, गोलोक का जितना भी धन है, मैंने हरि नाम में डाल के आपको दे दिया है, इससे श्रेष्ठ धन ही नहीं है मेरे पास। नामना मकारी बहुधा निज सर्व तत्रार पिता, कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी स्थान, किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण, किसी भी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, इस हरि नाम का पालन कर सकते हो और भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा महाप्रभु कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य क्या है, दुर्दैवम ईदृशम, कि हमारा जनिना अनुराग, इसके प्रति आकर्षण नहीं, जो भगवान ने दिया है उसका प्रति हमारा जो मूल है, मोल है, उसको नहीं दे रख पाते। जो भक्तों का संग दिया है उसके प्रति जो हमारा भावना होना चाहिए वो हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, दुर्दैव। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।